The makers of the following podcast and other persons associated with the podcast do not endorse and or bear any liability for any content, statements, views, ideas or opinions expressed in this podcast by the individual participants, nor for any issue arising in connection therewith. The podcast may contain strong language and ideas or concepts that may or may not be suitable for young children. Listener's discretion is advised.
Break those norms.
Catch the music.
Drag queen, drag queen, drag queen, and then drag king, drag king, drag king.
For the one, the only.
हाँ मुझे drag करना है तो
थोड़ा traditional होना चाहिए.
हम सब performers हैं.
Waiting to blossom.
I use a word like drag artist.
That will create change.
Come and join me.
This beautiful thing which is called drag.
Yeah, that's drag for you.
Hello and welcome, ladies and gentlemen, to Yes in Drag. And today we are very, very happy because we have a very special person who is on the show with us. Somebody who has been working for decades tirelessly to spread the knowledge about drag in our country and has also ensured that a lot of us now know it as part of our history and culture, which has existed for eons. He's a journalist. He's a documentary filmmaker. He is somebody who has worked tirelessly and very closely with climate change. So please put your hands together for the one, the only, Swaja. Swaja, welcome to the show.
Thank you so much.
So Swaja, generally jab log drag ki baat karte hain, you know, dimag mein references utti hain towards the Western culture. But you, on the other hand, have been spreading knowledge and awareness about the fact that the culture of drag has existed in our country for decades, maybe longer. So I would love for you to tell us, how did your tryst with Londa Nach begin?
First of all, we will acknowledge this thing. That we have been with us and now, there are many people who are doing this. And whose main focus is Londa Nach. और वो जो है वो प्रथा जो है आप बिहार में जानते हैं, पूर्वांचल में देखिएगा तो ज्यादा होता है उस तरफ, उस पूर्व में आज भी होता है. और वो लौंडा मतलब कौन, लौंडा मतलब कि वो जो मर्द हैं या ट्रांस हैं, तो बेसिकली स्टेज पर एक फेमिनिन रूप में आना और उसमें फिर अपने आप को पेश करना और नाचना और खासकर एक मेल गेज के लिए परफॉर्म करना. तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं ये. इसकी हिस्ट्री है, हजार साल तो है ही, उतना तो है ही. लेकिन ये जो इस तरह की जो प्रथा है जहाँ पे जो जो लोग नाच रहे हैं और जो लोग एक मेल गेज के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो है पूरे रीजन में भी, अगर आप जाएंगे हरियाणा की तरफ जाएंगे तो उस तरफ भी है और सारे स्टेट्स में भी है, बहुत सारे फोक फॉर्म्स में भी है.
राइट. ड्रैग जो मुझे अभी तक समझ आया है वो यही आया है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस. मगर जब आप लौंडा नाच की बात करते हैं, सेक्सुअलाइजेशन है एक परफॉर्मेंस की.
बिल्कुल बिल्कुल.
सो इसमें अंतर आई वुड लाइक यू टू ड्रॉ.
अच्छा, इसमें अंतर क्या है?
हाँ,
तो देखिए, जैसे कि ड्रैग में क्या है कि जो वेस्टर्न ड्रैग है उसमें जब आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो ये एक चीज, हाँ उसमें भी बहुत ही आप सेक्सुअलाइज वे में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमर भी है, उसमें सेक्सुअलाइजेशन भी है, उसमें ग्लैमर भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टेज का फर्क है. आप स्टेज पे कर रहे हैं, आप परफॉर्मर की तरह देखे जाते हैं और उसमें आप मतलब कि आपका जो रिलेशनशिप है जो आपके व्यूअर के साथ, वो कास्ट से नहीं डिफाइंड है. लेकिन अगर आप एक लौंडा नाच में देखेंगे तो उसमें जो आपका कास्ट क्यों ड्रॉप करना पड़ता है जब आप एक लौंडा बनते हैं, क्योंकि जो भी है आपकी फैमिली आपसे जुड़ाव नहीं रखना चाहती बहुत हद तक. दूसरी बात, आप जो जो लोअर कास्ट होंगे वहीं वहीं ज़्यादातर परफॉर्म कर सकते हैं इसे, या फिर आपका कास्ट जाएगा तो उसको भी अपना नाम ड्रॉप करना पड़ेगा. और जो देख रहा है, जो पे कर रहा है, वो किसी भी लोकेशन से हो, लेकिन अगर वो मर्द है तो वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो जेंडर रिलेशनशिप है. और वो जेंडर रिलेशनशिप भी है, और अगर वो अपर कास्ट है वो तो बिल्कुल फिर आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो सकता है.
सो हाउ डज दिस आइडिया प्ले आउट विद इन द ड्रैग सीन इन इंडिया?
तो देखिए, अगर ड्रैग के बारे में, खास कर केवल ड्रैग के बारे में ही बात करें, चाहे लौंडा नाच से जो इंस्पायर्ड जो नौटंकी जो मैं हम करते हैं, तो उसको हम वन एक्ट प्ले ही बोलते हैं.
राइट.
ड्रैग थिएटर फॉर्म में तो रहा है. आप जो गप्पा जो गम्मा उनके परफॉर्मेंसेस को देख लीजिए कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और या फिर अगर आप गुरमर गान को देख लीजिए असम में. लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि जो थिएटर है उसमें तो लड़कियों को स्टेज पे तो परफॉर्म करने की इजाजत नहीं थी.
करेक्ट.
तो फिर अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो लड़की का रोल कौन निभाएगा. तो फिर वही था कि वो लड़के करेंगे और किस तरह के लड़के करेंगे. तो अगर आप जाएंगे रामलीला में भी, अभी भी जाएंगे रामलीला में बहुत जगह पे.
करेक्ट.
तो वहाँ पे भी बहुत सारे लड़के हैं जो परफॉर्म करते हैं. और ये जो स्पेस होता है ना, अगर आप इस स्पेस में अगर जाएंगे जो रिलीजियस स्पेस है, तो वहाँ पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक लड़का अगर लड़की का रोल निभा रहा है, तो फिर डेफिनेटली बेइज्जती नहीं होती आपकी.
हाँ.
क्योंकि आप एक होली सेक्रेड रोल में हैं. आप सीता का रोल निभा रहे हैं, ठीक है, या सीता की सखी का रोल निभा रहे हैं, तो उसमें फिर वो एक एक्सेप्टेंस है. मतलब कि एक तरह से आप सेक्रेडनेस के लेंस के थ्रू जब देखें तो बॉडी की मतलब, बॉडी का मतलब बदल जाता है.
हाँ.
तो ये जो जेंडर फ्लूइडिटी है, इसका जो परफॉर्मेंस है, ये इतने रूप में, इतनी जगह में इस कल्चर में रहा है, या फिर जो एक एस्टैब्लिश थिएटर है, विदेशी थिएटर जो रिस्पेक्टेबल है, उसमें अगर आप करेंगे तो बहुत इज्जत है. लेकिन उससे अगर आप स्ट्रीट पे चले जाएंगे ना, तो फिर आपको छुआ भी जाएगा, आपको मतलब कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है.
हाँ.
और वो लौंडा नाच में बिल्कुल है कि आप गांव गांव गली गली में जाएंगे, तो अभी क्या है कि थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई है कि आप लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो लड़के लड़की की तरह बन रहे हैं उनके लिए ठीक है, चलेगा. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं अगर लौंडा नाच उठा रहा हूँ, तो मतलब कि अगर हम जाएं अगर बिहार के गली में अगर परफॉर्म करेंगे, तो उसका एक ऑलरेडी एक मतलब है. उसका उसमें जो मेल गेज है, उसमें जो जिस तरह से परफॉर्म किया जाता है, जिस तरह से उसमें मतलब केवल एक सेक्सुअल फॉर्म की तरह उसे देखा जाता है, या फिर सेंसुअल सेक्सुअल फॉर्म की तरह देखा जाता है, जिसमें आप एक बॉडी को एक तरह से कंज्यूम कर रहे हैं.
सो स्वजा, आपकी जर्नी बिहार से शुरू हुई, एंड व्हेन यू डिड ड्रैग, What was that like for you? I mean, starting your journey from the state of Bihar.
हमरा के भोजपुरी आवेला, हम भोजपुरी में बात करेंगे. वो है हमार मातृभाषा बा. हमारे घर पे भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन अब यही बात है कि जब छोटे थे तो हमारे नेबर्स के साथ हम बात करते थे. और उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे, तो माँ बाप ने बोला कि भैया तुम भोजपुरी में बात करो, हमसे भी घर पे भी तुम हिंदी में ही बात करो.
उसकी वजह?
उसकी वजह यही थी कि आप वो एक्सेंट ना पिकअप कर लें, क्योंकि आप बिहार में बड़े हो रहे हैं, तो आइडियाज तो यही है कि आप बिहार में नहीं रहेंगे. तो वो जो विदेश तो सबको जाना है, ये तो लिखा हुआ है. आपको बिहार में नहीं रहना है, तो अगर बाहर जाना है तो बाहर के कल्चर में अगर सम्मिलित होना है.
हाँ.
तो अंग्रेजी तो अच्छे से आनी चाहिए.
करेक्ट.
और अगर अंग्रेजी नहीं भी आती तो हिंदी ऐसी बोलनी चाहिए कि हिंदी में बुझाए ना कि आपका जो हिंदी है वो बिहार से है.
हाँ.
ठीक है ना. तो पूरा प्रयास करना है कि आप पूरी तरह से वहाँ होमोजेनाइज हो जाएं, एक इमेजिनरी होमोजेनाइजेशन में.
ओके.
तो अगर जैसे हम जब हम कॉलेज में थे, तो हम नाचना, हम डांस करते थे, हमें स्टेज पे रहना पसंद था. और मैं अच्छा करता था, ठीक था, मुझे लगा कि मैं इसी में एक्सप्लोर करूँ. तो मेरी माँ बाप का सवाल था, क्या नचनिया बनोगे तुम? तो उसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली अगर आप नचनिया बनोगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी. और उसके बाद नचनिया के साथ क्या हो सकता है, और नचनिया मतलब कि भोजपुरी में या बिहारी में, भोजपुरी में ही मतलब मतलब हुआ मतलब कि जो नौटंकी नाचने वाली है, अब उसका उसके उसका उसका कोई एजेंसी नहीं होता है. ठीक है ना. उसको एजेंसी दिया नहीं जाता है कि आप अगर नचनिया हैं तो आप प्रोस्टिट्यूट भी हो सकते हैं. हम डिसाइड करेंगे आप. हाँ, क्या है,
मतलब सोसाइटी डिसाइड करेगी.
हाँ,
उसका खुद का वजूद खत्म हो जाता है.
जो देखने वाला वो डिसाइड करेगा हम आपको किस तरह, आपकी बॉडी को हम किस तरह ट्रीट करेंगे. तो वो चीज़ लौंडा नाच में होता है कि मतलब कि आपको देखने वाला ड्रैग की तरह नहीं है कि आपको इज्जत से पेश आए, या फिर आप उसमें कॉस्ट्यूम से निकल गए तो आपके साथ मतलब कि एटलीस्ट एक सेफ स्पेस में जहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे आप वैसे नहीं बिहेव कर सकते हैं. तो फिर वो जो है वो अब उसमें किस हद तक एक्सप्लॉयटेशन होगा, किस तरह तक क्या हो सकता है, वो हर सिचुएशन पर निर्भर करता है, लेकिन वो होता है. तो फिर जब हमने परफॉर्म किया तो हमने ये बोला कि ये एक वन एक्ट प्ले है. ठीक है, ड्रैग का नाम ही नहीं दिया, बोला कि ये वन एक्ट प्ले है. अवतारी देवी, एंड अवतारी देवी का जो आइडेंटिटी है वो मतलब कि क्योंकि मैं ट्रांस हूँ तो वो ट्रांस परफॉर्मर हैं. और लेकिन वो ड्रैग आर्टिस्ट, अगर आप देखना चाहते हो तो ड्रैग आर्टिस्ट भी हैं. ठीक है, एक तरह से एक जेनरिक आइडेंटिटी इसलिए भी देना चाहता हूँ ताकि फिर वो एकदम कैटेगराइज नहीं हो जाए कि अच्छा ये ड्रैग है तो केवल एक तरह के लोग देख सकते हैं. नहीं, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी आके देख सकता है. एज लॉन्ग एज आप मतलब कि आप सवाल पूछें कितना भी कैसा भी सवाल पूछो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक कॉन्वर्सेशन है, ये हमेशा एक कॉन्वर्सेशन है, और इसको, और अगर हमें दायरा बढ़ाना है ना तो हमें अपना भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा।
क्या बात कही, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जब मैं लौंडा नाच कर रहा हूँ और मैं बिहार में नहीं बल्कि बाकी जगह, दिल्ली में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, और मतलब कि अच्छे स्टेज में कर रहा हूँ और चार्ज कर रहा हूँ टिकट उसके लिए, तो मैं फुल एजेंसी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, फुल एजेंसी के साथ, कि मैं डिफाइन करूँगा या मैं डिफाइन करूँगी कि आप मुझे किस तरह से देखें और कितनी दूरी से देखें, और हम आपको प्रोवोक करेंगे और आपको वो प्रोवोकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें मैं बहुत बहुत ज़्यादा एजेंसी लाने का प्रयास है, लेकिन हाँ उसमें उसमें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा एक प्रिविलेज है। मैं लौंडा, जैसे मैंने बोला, मैं लौंडा नाच पूरी तरह पेशे की तरह नहीं कर रहा हूँ, वो जो अभी भी मैं क्लाइमेट चेंज में काम कर रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी में, कम्युनिकेशंस में, मीडिया में काम कर रहा हूँ, क्योंकि उससे वो एक वो ऑफकोर्स एक रिस्पेक्टेबिलिटी जो बनी है, तो उसको लाते हैं और उसके थ्रू जो ये जो मैं भाषा बोल पा रहा हूँ उसकी ट्रेनिंग मेरी उन सब चीज़ों को पढ़ के हुई है, मीडिया को पढ़ के हुई है, जेंडर को पढ़ के हुई है, लेकिन लेकिन मैं इन सारी प्रिविलेज को यूज़ कर पाता हूँ और इस सारी प्रिविलेज को यूज़ करके इस डांस को, इस फॉर्म को अपने तरीके से, अपने नए तरीके से थोड़ा सा मैं पेश कर पाता हूँ।
मगर जब आप ड्रैग देखते हैं स्वजा, मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के ड्रैग की,
हाँ,
आपका पर्सनल क्या रिएक्शन है?
तो मेरा जो पूरा जो अवतारी देवी का जो जन्म हुआ वो इसी एक तरह से वो जो जर्नलिज्म, जो एक जर्नलिस्ट स्पिरिट होती है, थोड़ा रिएक्शन में सवाल उठाने का, एक क्रिटिकलिटी लाने का, तो वो ही मेरा था। और दूसरी बात ये, और इसमें जो मेरा अभी भी रिएक्शन है वो बहुत पर्सनल है। ओवर टाइम आई बिकेम लाइक देन आल्सो एंड देन लेटर आल्सो आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल विद माय बिहारी आइडेंटिटी एंड आई वेरी मच असर्टेड हाँ बिहारी हूँ,
राइट।
तो मेरा जो रिएक्शन है ड्रैग को देखने का वो इन सारे पहलुओं से आता है कि अच्छा इसमें मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, और ये बात केवल ड्रैग की नहीं है, जब छोटे में भी थे सारे बच्चे जो मेरे साथ थे सब एनेट ब्लाइटन पढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या किताब है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता था। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में भी आने के बाद ना, जब मैं इंडियन ऑथर्स को पढ़ता था, जैसे कि अमिताभ घोष हुए या उस समय राधिका झा थी या फिर
sure.
तो फिर लगा कि अच्छा इसमें कुछ है जो अपना लग रहा है मुझे, वरना बाकी मुझे लगता नहीं है। और वही रिएक्शन मेरा आया जब मैंने ड्रैग को देखा जो क्लब में हो रहा था कि मतलब कि अच्छा हम लिपसिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ठीक है, मज़ेदार है, अच्छा है, लेकिन वही जो क्रिटिकलिटी जो थी मेरी उससे यही रिस्पॉन्स आ रहा था कि अच्छा तो इसमें कुछ सवाल उठाना चाहिए, इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिहार से आ रहा हूँ, तो पहली बात तो मैं भोजपुरी में ही कुछ करूँ, भोजपुरी से इन्फ्लुएंस होकर कुछ करूँ, तो फिर जो नचनिया मुझे बोला कि नचनिया मत बनो तो क्यों नहीं नचनिया ही बने थोड़ा और देखें क्या होता है। और उसके बाद फिर जो मेरी पॉलिटिकल एजुकेशन रही एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, व्हाटएवर, तो फिर उसको मैं कैसे इसमें लाऊं और इसके बाद जो सवाल पूछूं उसमें वो सारे पहलू भी हों।
Do you not think it is about time के हम drag को, अपने drag को mainstream theaters में या इन सब जगहों पे वापस revive करें?
तो कुछ कुछ जगह पे अगर आप देखें, जैसे कि मैंने बिहार में भी देसिया थिएटर का एग्जाम्पल दिया तो उसको रिस्पेक्ट है, उस तरह महाराष्ट्र में भी है, लेकिन मैं आपको लार्जर जो आप बहुत जो बड़ा सवाल आप पूछ रहे हैं, तो देखिए ये अगर आपके ऊपर कोई भी अगर आपके ऊपर राज करता है तो उसका जो पावर एक बन गया, ठीक है ना, तो जब आज़ादी मिले भी हमें तो उसके बाद उस समय तक अब जितने भी देश जो आज़ाद हो रहे थे, कॉलोनाइजेशन के दौर को का दौर ख़त्म हो रहा था, लेकिन उस दौर में जो हुआ जिसकी वजह से फ्रेंच और अंग्रेज़ी जो है वो हर कोने कोने में पहुंच गई थी, तो उसके बाद फिर वो ही एस्पिरेशनल कल्चर हो गया, अब वो तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो भाषा जो एक बार बन गई कि इस भाषा में पावर है, तो उस भाषा के साथ जो कुछ भी आएगा उसमें ही पावर निहित हो जाएगा, और वो जो पावर है वो अगर आप वो चाहे वो आप मीडिया के थ्रू कंज्यूम करें या किसी भी और जरिए से आप कंज्यूम करें, तो वही एस्पिरेशनल हो जाएगा, वही होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोस्ट कॉलोनियल टाइम जो है उसमें आप हमेशा एक कॉन्वर्सेशन में रहेंगे, आप एक चीज़ को हटा कर पीछे जाने की बात नहीं है, आप उस चीज को निकाल कर आप उसको नए तरीके से देखेंगे।
मगर स्वजा बाहर अगर देखें, ड्रैग बहुत एक्सेप्टेबल है। यूरोप या अमेरिका या इन जगहों की बात नहीं कर रहा, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में भी देखें या
बिल्कुल right? वो तो मतलब कि अलग ही है, वहां पे हर चीज है, फिर केवल ड्रैग नहीं है फिर वो। एंड दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल, थाईलैंड जो है
yeah.
और वो एक्चुअली अभी इनकी जो बुक आई है अभी शारे श्रांगनेकर की क्वीन सेपियन, उसमें भी जो बात होती है उसमें उनके जो एक्सपीरियंस है वो साउथ ईस्ट एशिया में रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक इसलिए भी क्योंकि उसमें भी वो टच करें कि कितनी ज्यादा थाईलैंड कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ था, तो इसलिए वहां पे जो एंड्रोजनी और जो जेंडर जो फ्लूइडिटी है वो इतनी ज्यादा है और इतनी नॉर्मल और इतनी एक्सेप्टेबल है कि उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब कि और वो अब जैसे बोल रहे थे कि कॉलोनाइजेशन के बाद जो है पोस्ट कॉलोनियल कल्चर्स में आपको ये कॉन्वर्सेशन कॉन्स्टेंटली जारी रखना पड़ता है। और मैं बोलूँगा कि अच्छा, अगर आप सोल्यूशन के तौर से पूछ रहे हैं कि किसको किस तरह से बढ़ावा देना है, तो बढ़ावा तो कॉन्वर्सेशन के थ्रू होगा, ठीक है। और फिर हमें इसमें केवल क्वीयरनेस जो है ना, आपने पहले एक सवाल पूछा था उसमें, जैसे कि हमने कुछ 10 या 12 साल पहले कुछ बुक्स आए थे उनको रिव्यू किया था, उनमें उसमें होशांग मर्चेंट की भी एक किताब थी याराना, और उसके उस समय नए नए किताबें आ भी रही थी। तो फिर उसमें एक बड़ा नोटेबल किस्सा है कि जब भी आप क्वीयरनेस को देखेंगे ना, क्वीयरनेस थोड़ा सा अगर आप 2 डिकेड पहले चले जाएं, क्वीयरनेस वो किसी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। आप भी अपनी जिंदगी में क्वीयर हो सकते हैं, ठीक है, और मैं भी अपनी जिंदगी में क्वीयर हूँ, हो सकता हूँ। जब हम आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि आप फिर आपको एक हार्ड आइडेंटिटी लेनी होगी, आप गे हैं, लेस्बियन हैं, क्या हैं आप, ठीक है, और आप जेंडर परफॉर्मेटिविटी में भी आप कहाँ पर हैं, क्या हैं, तो वो बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज में घुसना पड़ता है कि नहीं आप ये हैं और आप ये ही हैं। लेकिन जब आप क्वीयरनेस, और मैं होशांग मचन की कहानी को इसलिए रेफर करूँ क्योंकि उन कहानियों में आप पढ़ेंगे तो उसमें एक फ्लूइडिटी भी है, लेकिन जो एक कंटिन्यूइंग चीज़ ये भी है कि क्वीयरनेस जो है खुद में हर किसी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा ना, तब तक हम इसको सेलिब्रेट कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वो हम जब तक इसको एज अदर देखेंगे, कोई और है जो परफॉर्म कर रहा है, कोई और है जो यू नो दे आर लाइक अवतारी इज फ्रॉम अ क्वीयर कम्युनिटी एंड हेंस शी इज परफॉर्मिंग एंड हेंस शी इज डिफरेंट, वो अलग है और वो तभी वो उसका कुछ मतलब है। तो फिर जब तक उसको नहीं देखेंगे कि हाँ वो हमारी तरह ही है, जब तक वो नहीं फीलिंग आएगी ना, तब तक हाँ एक परफॉर्मर है और हम भी परफॉर्मर हो सकते हैं, आप भी परफॉर्मर हो सकते हैं, exactly. हम सब परफॉर्मर्स हैं।
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्वजा। तो जब जैसे कोई नया इस प्रथा में उतरता है और इसको इसकी शुरुआत करना चाहता है, तो आपका जनरली क्या थॉट पैटर्न रहता है, या उनको कुछ सुझाव रहता है, या आप क्या सोच देंगे उनको?
देखिए, क्योंकि इसमें हर कोई आता है अपने पहलू से आता है, अपनी जगह से आता है, क्योंकि क्वीयर समुदाय ना बहुत छोटा है, अभी भी छोटा है, और जो विजिबिलिटी मिल रही है वो नहीं है।
क्या करना चाहिए उसको बढ़ाने के लिए?
शायद अगर हम इसको अभी भी हम एक फॉरेन लेंस के थ्रू देखते हैं कि बाहर की चीज है, LGBTQIA है, सब कुछ है, बाहर के लेंस से जब तक देखते रहेंगे ना, तो उसको थोड़ा सा हमें वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी लिमिटेड रहेगी। तो आपने बोला कि अगर कोई नया आ रहा है उसको क्या एडवाइस दें, तो उसको बस ये बोलें कि आप अपनी सच्चाई से जुड़े रहें, अपनी जो सच्चाई है और अपनी जो अपना जो कॉन्टेक्स्ट है ना, उसमें इंक्वायरीज जरूर करें। जो भी आपका कहीं से भी कोई भी अगर एक्सपीरियंस रहा है बाहर कहीं पर भी, तो उनको लेकर अपने कॉन्टेक्स्ट में हम क्या सवाल उठा सकते हैं, इस बात को हमेशा समझें, क्योंकि ये डायलेक्टिक जो है, ये डायलेक्टिक प्रोसेस जो है, जो कॉन्वर्सेशन है, ये चलते रहना बहुत ज़रूरी है। वो कास्ट क्लास हर स्पेस में हो सकता है।
ब्यूटिफुल।
मन में थोड़ी जेनरॉसिटी रखिए, बस यही बोलेंगे हम, थोड़ा काइंडनेस रखेंगे तो, ताकि और पेशेंस रखेंगे तो हमें सबकी बात सुन के समझ पाने का थोड़ा सा बल बनेगा। और आज के दौर में जब बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस और कैंसिलिंग और सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे दौर में काइंडनेस का बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है, ठीक है। तो यही है कि उदार भाव से देखेंगे, काइंडनेस से देखेंगे, तो सच के जितने भी पहलू हैं उनको समझ पाने की क्षमता बढ़ेगी, और किसी भी समाज का, और खासकर डेमोक्रेटिक समाज का, वो तो उसमें वो क्षमता हो पाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से परफॉर्मेंस के लिए भी एक काइंड स्पेस बनेगा। दैट्स ऑल।
जाने से पहले, अगर ये बात अवतारी देवी अपनी परफॉर्मेंस में भोजपुरी गाने के द्वारा दें तो कैसे दें?
ये तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो गाने में तो हम हल्का ही रखते हैं।
चलो हाँ,
तो जैसे हमारा जो जो शुरुआत वाला जो गाना है नौटंकी में, जब अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे उसको किया जाता है? रख ली है जेने कदम हुईल गजब टूटल भरम, रख ली है जेने कदम हुईल गजब टूटल भरम, आईली 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 आये गईली, हाय आईली 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 आये गईली, अवतारी देवी बोली इन कर लागे नरम भरे नमक छोड़े गरम, हाय बोली इन कर लागे नरम भरे नमक छोड़े गरम, हाय आईली 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 आये गईली, हाय आईली 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 आये गईली, अवतारी देवी अवतारी 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 देवी अवतारी देवी।
अब हम क्या बोले, सिर्फ यही कर सकते हैं।
तो उसमें हम बोल रहे हैं कि इनका जो बोली है नरम लगेगा, सॉफ्ट, लेकिन आपके अंदर थोड़ा नमक जरूर भरेगा। ठीक है, तो नमक डालने से आपको थोड़ा रिएक्शन होगा, और जैसे हम छोड़ेंगे तो आप थोड़ा गर्मा भी सकते हैं। अब वो गर्मी कैसी है, गुस्से की है या फिर डिजायर की है, जैसी भी है, अब हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते क्योंकि भाई अवतारी देवी हैं। ठीक है, ऐसी ही हैं। तो मतलब एक डिस्क्लेमर है, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देते हैं भाई।
नाइस,
थैंक यू,
ब्यूटीफुल। आई थिंक स्वजा एके अवतारी देवी जी, आपका यहाँ आना बहुत ही ज्यादा उम्दा लगा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा मैं। एंड आई थिंक फाइनली यही बोलूँगा कि शायद वो एक आप ऐसा पेड़ हैं जिसपे फल इतने हैं तभी वो झुका रहता है।
थैंक यू सो मच, मतलब बहुत ही उदार आप हैं, तो इसलिए आप इतना देख पा रहे हैं, जितनी कैपेसिटी है उतना करते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।
सो विथ दैट वी कम टू द एंड ऑफ अनदर फैबुलस एपिसोड ऑफ इन ड्रैग, बट वरी नॉट, here's a tiny peek at what's in the next episode with Mystical Flame.
When a transgender person changes their name, you can't and shouldn't call them with their previous name. That is called dead naming and it's very insulting.
Ah, okay.
Pronouns, like addressing people in their right pronouns. So, maine har ek of this 11 sari series mein, I did like a audio voiceover with my pictures in front. And I put it out there.
This was a Turtle on a Hammock Films original podcast, hosted by Sudhir Sachdev, executive produced by Avinash Kumar Singh, produced by Geeta Singh, directed, mixed and engineered by Jigisha Patil, art and publicity design by Pooja Ray, guest recording studio Everest Studios, Hyderabad, sound recording copyright 2023 by Turtle on a Hammock Films LLP, all rights reserved.